समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, आज सवेरे के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। तन्वी खुराना के साथ आज मैं हूं नवीन सक्सेना, और अगले आधे घंटे के सफर में हम आपको उस दुनिया की सैर कराएंगे जिस दुनिया के बारे में आप थोड़ा बहुत तो जानते हैं लेकिन उतना नहीं जानते जितना हम जानते हैं। वो इसलिए कि इस कार्यक्रम के लिए थोड़ी बहुत रिसर्च हम कर आते हैं, क्यों तन्वी?
बिल्कुल नवीन, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। यस, दिस इज आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे एंड टिल 8 o'clock वी हैव अ लॉट इन स्टोर फॉर ऑल ऑफ यू।
तन्वी, आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ हम कर रहे हैं
जी,
और इस गीत को आपने हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बार सुना होगा लेकिन आज इसका एक खास महत्व है।
ऐ मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। ऐ मेरी जमीन महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे।
दोस्तों, आज की तारीख जुड़ी हुई है सारागढ़ी युद्ध में सिख सैनिकों के शौर्य और पराक्रम की गवाह से। वो आज ही का दिन था जब 1897 में केवल 21 सिखों ने हजारों अफगान हमलावरों को मौत के घाट उतार दिया। उनसे लड़ाई लड़ी थी और ये 21 सैनिक जो थे वो मौत के घाट उतर गए थे, शहीद हो गए थे। उन्हीं की वर्षगांठ में आज का दिन खास मनाया जाता है, सारागढ़ी का युद्ध। 10,000 अफगान हमलावरों को झेला था इन सिख सैनिकों ने। इतिहास के सेगमेंट में हम इस पे कुछ और चर्चा करेंगे। बहरहाल, आपको लिए चलते हैं अब खबरों की दुनिया में और समझाते हैं, जानते हैं और बताते हैं कि क्या कुछ हो रहा है आज दिन भर देश दुनिया में।
Absolutely. Today is 12th of September, a very special day, and today being Friday, just want to wish everyone a very happy Friday. And let's begin our program with the news headlines. C.P. Radhakrishnan will be sworn in as 15th Vice President of India today. President Draupadi Murmu will administer the oath of office to Mr. Radhakrishnan at Rashtrapati Bhavan. He emerged victorious in the vice presidential elections held on 9th of this month. NDA nominee Radhakrishnan bagged 452 votes, defeating the INDIA bloc candidate and former Supreme Court Judge P. Sudarshan Reddy by a margin of 152 votes.
अगली खबर पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में ज्ञान भारतम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे। वो पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, संरक्षण और सार्वजनिक पहुंच में तेजी लाने के लिए एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म ज्ञान भारतम पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 3 दिवसीय ये सम्मेलन कल पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान विरासत को पुनः प्राप्त करना विषय पर शुरू हुआ था।
In a significant step to enhance India's maritime security, Indian Navy will commission INS Aravali at Gurugram today. In a statement, Defence Ministry said that INS Aravali, named after the Aravali mountain range, will strengthen the Navy's information and communication infrastructure. The naval base exemplifies supportive and collaborative ethos, working seamlessly with naval units, MDA centres and allied stakeholders. The ceremony will be presided over by the Chief of the Naval Staff, Admiral Dinesh K. Tripathi.
निर्वाचन आयोग आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालयों के मीडिया एवं संचार अधिकारियों के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। कार्यशाला का उद्देश्य ये स्पष्ट करना है कि देश में चुनाव संविधान के अनुसार होते हैं और कानूनी, तथ्यात्मक तथा नियम आधारित सूचनाओं को समय पर और समन्वित तरीके से संप्रेषित करने को महत्व को बताना है।
The U.S. Ambassador-designate to New Delhi, Sergio Gore, has said that India is one of the most important relationships America has in the world. While appearing before Senate for his confirmation hearing, he described India as a strategic partner whose trajectory will shape the region and beyond. He said he will prioritize deepening defense and security cooperation with India.
Under President Donald Trump's strong leadership, I'm committed to advancing America's interest in this important partnership. India's geographic position, economic growth, and military capabilities make it a cornerstone of regional stability and a critical part of promoting prosperity and advancing the security interests that our nations share. India is one of the most important relationships our nation has in the world. If confirmed as ambassador, I will work to deliver on the president's agenda and advance U.S. interests by increasing our defense cooperation, ensuring fair and beneficial trade, deepening energy security, and furthering technology.
Sergio Gore also revealed that the U.S. has invited an Indian delegation to visit Washington next week, and the two sides are close to a deal. Indian Ambassador to U.S. Vinay Kavatra welcomed Mr. Gore's nomination, saying that President Trump is sending one of his most trusted aides to serve as the next U.S. Ambassador to India.
और अब रुख करते हैं देश के उत्तर पूर्वी हिस्से का. उत्तर सिक्किम के मंगम जिले में पर्यटन गतिविधियां फिर से शुरू हो गई हैं. जून में बाढ़ और भूस्खलन के बाद से जिले में पर्यटन बंद था. पर्यटन विभाग के अपर मुख्य सचिव सीएस राव ने बताया कि पर्यटक मंगन जिले के लाचुंग, युमथांग घाटी और जीरो पॉइंट तक जा सकते हैं, लेकिन लाचेन में पर्यटन अगले साल जनवरी में शुरू होगा. श्री राव ने कहा कि सिक्किम पर्यटकों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन इस बीच सिक्किम में ग्यांशलिंग जिले में रिम्विक गांव में कल रात भूस्खलन में 4 लोगों की मौत हो गई. अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस दुर्घटना में एक व्यक्ति लापता है जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल है. ऐसा माना जा रहा है कि बारिश के कारण ये दुर्घटना हुई.
And moving towards sports in tennis, two-time Olympian Sumit Nagal will spearhead Indian team's challenge against ninth-seeded Switzerland in the Davis Cup 2025 World Group 1 tie at the Swiss Tennis Arena in Bale today. India's top singles tennis player at world number 290, Sumit Nagal will be joined by 401st-ranked Aryan Shah and 626th-ranked Dakshineshwar Suresh in the Indian squad. N. Sriram Balaji and Ritvik Chaudhary Bolipalli will be India's specialist for the doubles rubber, while Rohit Rajpal is the non-playing captain of the squad.
आज सवेरे में अब पलटते हैं एक और पन्ना और आपके शहर की ओर चलते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ हो रहा है मेट्रो सिटीज में.
Let's begin with Chennai. The two-day Tamil Nadu Rising Hosur Investor Summit began yesterday, with the state government signing investment deals worth 4,000 crore rupees, primarily in the automotive and electric vehicle, that is EV, components sector. A total of 14 memorandums of understanding, that is MOUs, were signed, expected to generate around 7,500 jobs across the state. Among the major investments, Uno Minda Group will set up a greenfield auto and EV components manufacturing plant in Krishnagiri district with an investment of 1,500 crore rupees, creating about 4,000 jobs. And some more news from Chennai. IIT Madras launched Tamil Nadu's startup, an innovation dashboard called Innovation TN. The platform is the first of its kind in India, showcases the innovation prowess of the state and is a one-stop source for information on the startup landscape of Tamil Nadu. The platform provides a comprehensive overview of the startup ecosystem of Tamil Nadu and showcases the innovation prowess to different stakeholders, such as investors, industries, financial institutions, and startup founders. An MOU was signed on 23rd of July 2025 at Chennai between Guidance Tamil Nadu IIT Madras and YNOS for the development of the dashboard. Moving towards Bangalore, Karnataka Chief Minister Siddaramaiah has emphasized that the Commonwealth Parliamentary Association is not merely an institution, but a living network of ideas, values and aspirations. Speaking at the inauguration of the 11th Commonwealth Parliamentary Association India Region Conference in Bangalore last evening, Mr. Siddaramaiah said that the parliamentary Asia or not, binds together nations and regions across continents, transcending geography and history, uniting us through our commitment to parliamentary democracy. And if we go towards Hyderabad, Telangana Housing Minister Pongulette Srinivas Reddy inaugurated the Indira Amma India, that is Indira Amma Housing Call Centre, set up at the State Housing Corporation office in Hyderabad yesterday. The call centre will attend to grievances of housing beneficiaries if there are any. The toll-free number is 1-800-599-5991. This will function daily from 700 hours to 2100 hours, that is 7 a.m. to 9 p.m., enabling beneficiaries to raise issues ranging from non-payment of bills to technical glitches and also allegations of corruption. So these were the updates from three cities, Chennai, Bangalore and Hyderabad. Now Naveen, tell us more about Delhi, Mumbai and Kolkata.
सबसे पहले रुख दिल्ली का करते हैं तन्वी. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की प्रगति और लंबित परियोजनाओं को लेकर एक समीक्षा बैठक की. इस बैठक में विभिन्न विधानसभाओं में अतिक्रमण और ट्रैफिक जैम की समस्या से निपटने के लिए विचार विमर्श हुआ. उधर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने स्पष्ट किया है कि दिव्यांगजनों के लिए प्रतियोगी लिखित सार्वजनिक परीक्षाएं इस साल 31 दिसंबर तक पूर्व दिशा निर्देशों के तहत प्रचलित प्रणाली के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी. दिल्ली एक ऐसा शहर है तन्वी जहां पे उत्सव, मेले, एग्जीबिशंस बहुत कुछ चलता रहता है और जैसे जैसे मौसम बदलता रहता है ना ये गतिविधियां बढ़ती ही चली जाती हैं. ऐसा ही एक मेला इस समय दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, उसे कहते हैं सरस आजीविका मेला. दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में इसका आयोजन किया जा रहा है और ये पहली बार है जब इस मेले का आयोजन दिल्ली में है. हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरस आजीविका मेले के सातवें दिन मेले में बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं. सुनते हैं सकलेन को.
इस वर्ष लखपति दीदी थीम पर आधारित ये मेला देश के स्वयं सहायता समूहों की 400 से अधिक महिला उद्यमियों को एक साथ ला रहा है. इस वर्ष मेले में हस्तशिल्प, हस्तकला और घरेलू उत्पादों के साथ साथ इंडियन फूड कोर्ट भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. भारत की विविधता और विभिन्न राज्यों की कला, संस्कृति और खान पान को प्रस्तुत करते हुए यह मेला प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों से भी लोगों को आकर्षित कर रहा है. मेले में आ रहे आगंतुकों की सुविधा लिए शटल सेवा, चिकित्सा सहायता और स्वच्छ शौचालय जैसी सुविधाओं की व्यवस्था भी की गई है. मेले में मुंबई से भाग लेने आई एक आगंतुक मनीषा पांडे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि इस मेले के जरिए उन्हें सभी राज्यों की कला, संस्कृति और खान पान को एक ही जगह अनुभव करने का अवसर मिलता है. वहीं मेले में पहली बार भ्रमण के लिए आई एक अन्य आगंतुक पूनम वशिष्ठ ने बताया कि उन्हें अलग अलग स्टॉल पर विभिन्न राज्यों से जुड़े हस्तनिर्मित सामान देखने को मिल रहे हैं और वह उन्हें खरीद भी रही हैं.
सरस मेले का बहुत सुना था तो मन था घूमने का. आज मैं यहाँ शाम को अभी घूमने आई हूँ. काफी कुछ है देखने को यहाँ पे. अलग अलग स्टेट्स के बहुत सारे कपड़े लगे हुए हैं. मुझे तो बहुत पसंद आया.
मेले में आगंतुक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से रात 9:30 बजे तक जा सकते हैं और इस महीने की 22 तारीख को मेले का अंतिम दिन है.
तो मेले में जाने के लिए आपके पास बहुत दिन है. आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे कल है, तो दो दिन जम के इस मेले का लुत्फ उठाइए. चलिए अब हम मुंबई का रुख करते हैं. मुंबई विश्वविद्यालय के डिस्टेंस और ऑनलाइन शिक्षा केंद्र के डिग्री और स्नातकोत्तर स्तर पर विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया को बढ़ा दिया गया है. संशोधित कार्यक्रम के अकॉर्डिंग छात्र अब 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. पश्चिम रेलवे ने आगामी त्योहारी सीजन के लिए विशेष किराए पर उधना और पुरी के बीच एक साप्ताहिक विशेष ट्रेन के चलने की घोषणा की है. ये ट्रेन हर मंगलवार को शाम 5 बजे से उधना से रवाना होगी और अगले दिन 10:45 पर पुरी पहुंचेगी. उधर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा है कि संघर्षग्रस्त नेपाल में फंसे पर्यटकों को वापस लाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने बीड जिले के पर्यटकों का एक समूह सड़क मार्ग से वापस लौट रहा है मगर ठाणे, पुणे, मुंबई, लातूर और कोल्हापुर जिलों में कम से कम 100 अन्य पर्यटक अभी भी नेपाल में फंसे हुए हैं. कोलकाता की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में 7 दिवसीय नरेंद्र कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सदस्य समीक भट्टाचार्य ने हावड़ा जिले के दासनगर में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया ये टूर्नामेंट 17 सितंबर तक चलेगा। आपके शहर की खबरें हों और आपके शहर का मौसम ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्यों तन्वी?
Absolutely. Let's begin with Chennai. Chennai is expected to have partly cloudy sky with the possibility of moderate rain or thunderstorm. The minimum temperature was 26 degrees and the maximum will be around 34 degrees. And Bangalore is expected to have partly cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The minimum temperature was 20 degrees and maximum will be around 27 degrees. And Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with a few spells of rain or thunder showers. The temperature will somewhere hover between a minimum of 22 degrees and a maximum of 30 degrees.
Tanvi, lagta hai ki Delhi mein barish ka daur guzar chuka hai aur umas ka daur shuru ho chuka hai. Ab dekhiye na, kal ka din bhi lagbhag umas bhara raha tha aur aaj bhi tapman halanki 25 degree tak hi pahunchega, न्यूनतम और अधिकतम 34 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है, लेकिन मौसम विभाग कहता है कि ह्यूमिडिटी थोड़ी सी रहेगी। मुंबई की बात करें तो तापमान 25 डिग्री और 31 डिग्री के बीच वैरी करेगा। कोलकाता में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। तो ये थी मौसम की जानकारी आपके शहर की। जब घर से निकलिएगा ना तो हमें जरूर याद कीजिएगा। और अब हम याद करते हैं उन तमाम घटनाओं को जो जुड़ी हुई हैं आज के दिन से।
Absolutely. If we talk about the year 1948, Indian Army invaded the state of Hyderabad a day after Pakistani leader Muhammad Ali Jinnah passed away.
कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको सारागढ़ी के युद्ध के बारे में बताया था, एक बार फिर उसे याद करते हैं, आपको याद दिलाते हैं। 1897 आज ही का दिन था और आज सारागढ़ी के युद्ध की वर्षगांठ है। कहते हैं यूं तो सिख सैनिकों के उनके अदम्य साहस और निडरता के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन 128 साल पहले हजारों अफगान हमलावरों को सिख सैनिकों के साहसी और निडर रूप की जबरदस्त झलक देखने को मिली। सारागढ़ी की लड़ाई वर्ष 1897 के सामना रिज पर लड़ी गई थी जो अब पाकिस्तान में है। सारागढ़ी एक सुरक्षा चौकी थी जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया था कि लॉकहार्ट किले और गुलिस्तान किले के बीच संचार बिना किसी बाधा के जारी रखे। और इस दिन 14,000 पठानों को सिर्फ 21 सिखों ने हराया था और इन मुट्ठी भर सैनिकों की अतुलनीय वीरता के कारण सारागढ़ी की लड़ाई को दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक माना जाता है। और तन्वी, हम सब जानते हैं इसी कहानी पर एक फिल्म भी बनी थी, केसरी। खूबसूरत गीत है जिसे हम शायद कभी नहीं भुला पाएंगे।
बिल्कुल।
नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू।
अगर आपने सारागढ़ी को नहीं पढ़ा है तो आप एक बार आज जरूर हिस्ट्री खोलिएगा, पढ़िएगा, और नहीं जान पाए या नहीं पढ़ पाए तो केसरी मूवी जरूर देखिएगा। जिक्र करते हैं अगली घटना का जो जुड़ी है आज के दिन से। साल 1959, आज ही के दिन तत्कालीन सोवियत संघ का रॉकेट लूना 2 चांद पर पहुंचा था और ये बहुत बड़ी कामयाबी थी जिससे अमेरिका बेचैन हो गया था और दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ यानी स्पेस रेस शुरू हो गई थी।
Absolutely. In the year 1966, Mihir Sen became the first man to swim across the Dardanelles, completing the 40-mile stretch in 13 hours and 55 minutes. And if we talk about the year 1990, Konkan Railway project formally launched with the opening of a project office in Ratnagiri in the state of Maharashtra.
1873 वो आज का दिन था जब पहला व्यावहारिक टाइपराइटर ग्राहकों को बेचा गया था।
In the year 1998, India-Malaysia signed an agreement on cooperation in science and technology in Kuala Lumpur. And in the year 2002, India's first dedicated meteorological satellite was Kalpana 1, launched by the Indian Space Research Organization, that is ISRO, using a polar satellite launch vehicle PSLV.
Tanvi, is bahut badi duniya mein bahut sare log aate hain chale jate hain, lekin kuch log aise hain jo jeevan mein kuch aisa kar jate hain ki unhe hum hamesha hamesha ke liye yaad karte hain. Aur aaj ka ye segment, ya yun kahe ki aaj savere ka ye segment, unhi logon se juda hota hai.
And in this list, the first name that I'm taking is Paul Walker. Today is the birth anniversary of Paul Walker. He was an American actor. He's best known for his role as Brian O'Connor in the Fast and Furious franchise. He began his career as a child actor in the 1980s, gaining recognition in the 1990s after appearing in the television soap opera The Young and the Restless. And he received praise for his performances in the teen comedy that's She's All That and also Varsity Blues. And of course, he rose to international fame by starring in the Fast and the Furious franchise. At the time of his death, Paul had not completed the final movie that was Fast and Furious 7, which was in 2015, and it was released after the rewrites and stand-ins, including his own brothers Cody and Caleb, were used to complete the film, and there was a particular song which was used as a tribute to Paul Walker. The song is See You Again by Wiz Khalifa and Charlie Puth. Let's just hear the song and remember him.
How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again.
I see you again.
We've come a long way,
yeah, we came a long way
from where we began.
You know, we started.
Oh, I'll tell you all about it.
आज हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, न्यायविद और लोक सेवक बलदेव प्रसाद मिश्र को हम याद कर रहे हैं. 1898 में वो आज का दिन था जब उनका जन्म हुआ था. आज उनकी जन्म जयंती है. भारत के वो ऐसे प्रथम शोधकर्ता थे बलदेव प्रसाद मिश्र, जिन्होंने अंग्रेजी शासनकाल में अंग्रेजों के बदले हिंदी में अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत कर डीलिट की उपाधि अर्जित की थी. और बलदेव प्रसाद मिश्र ने तुलसी दर्शन पर विशेष काम किया था.
And now we are talking about nobody else but a character who has imprinted on our hearts, and the name is Puneet Iyer. Today is his birthday. An Indian actor, writer, director, producer and dialect coach, he is best known for his works in Hindi, Bengali, Telugu, Kannad, Malayalam and also television shows. And the one character that he has played is Duryodhan in B.R. Chopra's television series Mahabharat. And let's just hear that one dialogue from the entire series.
मैं 99 भाइयों के शव उठा चुका हूँ. राधे जैसे मित्र का दाह संस्कार कर चुका हूँ. गुरु द्रोण का शव उठा चुका हूँ. अमा श्री शकुनी का शव उठा चुका. इतने आदरणीय और प्रिय शव उठाकर मेरे अंधे टूट चुके हैं. परंतु हे वासुदेव, अपने महारथियों से कहो कि मैं भयभीत नहीं हूँ.
मेरा अभिमन्यु भी अकेला था दुर्योधन. मेरा अभिमन्यु भी निहत्ता था. मेरा अभिमन्यु भी घायल था. मेरा अभिमन्यु भी थका हुआ था दुर्योधन.
हाँ, परंतु युद्ध के आरंभ में नहीं, वार्तालाप में समय नष्ट कीजिए भ्राताश्री. मुझे ये बताइए, आप सब कायर मुझसे एक साथ युद्ध करेंगे या अलग अलग?
तन्वी, पुनीत इसर ने 150 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन फिल्म बॉर्डर के उस सूबेदार के चरित्र को हम कभी नहीं भूल सकते. और उन्होंने ऐसा निभाया कि वो डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर गूंजता है.
सिर्फ दो RCL गन्स. उनका ख्याल है कि दुश्मन के पास दो ही चार टैंक्स हैं.
दो चार क्या सर, दो चार सौ हो दे. रतन सिंह हो, आपको चिंता करने की कोई लोड़ नहीं. मौका आने मैं अपना सिर टैंक दी तोप दे मुंह विच वाड़ कर तोपा नु चुप करा देंगे साहब जी.
रतन सिंह ना बदले है ना बदलेगा.
श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने फरमाया है, चिड़िया नाल जे बाज लड़ावा ता गोबिंद सिंह नाम धरावा.
यस, वी वर टॉकिंग अबाउट पुनीत ईसर. And moving towards another name in this list, today is the death anniversary of Johnny Cash, an American singer-songwriter. Most of his music contains themes of sorrow, moral tribulation, and redemption, especially songs from the later stages of his career. Johnny wore a trademark all-black stage wardrobe, which earned him the nickname Man in Black. He is one of the best-selling music artists of all time. His genre, that spanning music, embraced country, rock and roll, rockabilly, and blues, folk, and gospel sounds. This entire crossover appeal earned him the rare honor of being inducted into the Country Music, Rock and Roll, and Gospel Music Halls of Fame. His life and career were dramatized in the 2005 biopic Walk the Line. And there is a song titled Walk the Line by him only. Let's hear that and remember him.
I walk the line.
आज असाधारण प्रतिभा के धनी रचनाकार रांगी राघव की भी पुण्यतिथि है। हिंदी के विशिष्ट और बहुमुखी प्रतिभावानों से वो एक थे। मूल नाम था तिरुमल्लई नंबकम वीर राघव आचार्य। हिंदी साहित्य का कोई अंग नहीं था जहां हिंदी साहित्य के साधक डॉक्टर रांगी ने अपनी साधना का प्रयोग ना किया हो। बहुत कम लोग जानते होंगे हिंदी साहित्य का यह अनूठा व्यक्तित्व तमिल भाषी था, लेकिन इसे हिंदी के शेक्सपियर की संज्ञा दी जाती है।
And today is the birthday of Hans Zimmer, a German film composer and music producer. He has received numerous accolades, including 2 Academy Awards, a BAFTA Award, and 3 Golden Globe Awards, as well as nominations in Grammys and Emmy Awards. Well, if you have seen the movies, be it The Lion King and The Last Samurai, Gladiator, The Dark Knight Trilogy, Inception, Interstellar, No Time to Die, Dunkirk, then yes, you know Hans Zimmer very well. He has collaborated with Christopher Nolan on 6 films, starting with Batman Begins, that was in 2005. And there is the music that he has created along with A.R. Rahman. And we are all waiting for this particular music. This is from Namit Malhotra's film Ramayan, and this is yet to be released. Here it comes. Yes, Hans Zimmer, we are talking about since 1980s, he has composed music for over 150 films.
Tanvi, Hindi cinema ek aisa cinema hai aur uska bhi ek dashak tha, 50 se 60 ka dashak, aur usme bhi kuch aise gaane the jo aaj bhi hum sunenge to gungunane par majboor ho jayenge. Aur is dauran kai sangeet jodiyan thi jinhone behtareen sangeet diya. Aaj usi ek jodi ke Shankar Jaikishan ke Jaikishan ki punyatithi hai. जयकिशन भले ही संगीतकार के तौर पर साथ रहे, लेकिन उन्होंने एक संगीत का युग दिया। वक्त हमें कह रहा है कि अब उन्हें हम याद करेंगे उन खूबसूरत गीतों के साथ। बहुत ही मेलोडियस गीत है जो हम चुनके लेकर आए हैं और उन्हें याद करते हैं, और आज दिन भर आप उनके गीत गुनगुनाइएगा।
ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना, के तुम मेरी जिंदगी हो, के तुम मेरी बंदगी हो। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है, तुझे सूरज मैं कहता था मगर उसमें भी आग है, तुझे इतना ही कहता हूँ कि मुझको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी।
ये शंकर जयकिशन के बहुत ही खूबसूरत गीत हैं जिसके साथ आज हम आपको मैं और तन्वी छोड़े जा रहे हैं और उम्मीद है कि आपको आज का आज सवेरे पसंद आया होगा।
Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhata Hindi News Bulletin followed by the morning news in English at 8:15 a.m. Thanks for tuning in. Have a superb day.
Namaskar.
Mite jo pyar ke liye wo zindagi jale bahar ke liye wo zindagi kisi ko ho na ho hame to aitbaar jeena isi ka naam hai.